نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الله تبارك تعالى في المقام الآخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے خوبصورت طریقے دیے. دنیا بھی وہی دیتا ہے اور آخرت بھی وہی دے گا. عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں. لیکن کسی کو کتنا ملے گا اور کیا ملے گا اس کا فیصلہ اس انسان کے اعمال کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے دو مختلف جگہ سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی. پہلی آیت سورۃ نخل کی آیت نمبر 112 تھی. اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی. اور اللہ تعالیٰ ایک آبادی کی مثال بیان فرماتا ہے جو ہر طرح سے امن چین سے تھی, ہر طرف سے رزق بفراغت چلا آتا تھا, مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا. آیت بہت ہی زیادہ ڈرا دینے والی ہے. ٹیکس کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ مکہ کی بات تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر کے کسی ایسی بستی جس پہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں تھیں, انعامات تھے, اکرامات تھے, لیکن بعد میں لوگوں کے برے عملوں کی سزا میں اس بستی سے اللہ تعالیٰ نے سکھ اور چین کو خوف میں بدل دیا اور رزق کی جگہ فقر اور خوف اور جوع آ گئی. تو یہ آیت قوموں کے مقدر کی کہانی سناتی ہے کہ قومیں کب اللہ کی محبوب ہوتی ہیں اور کب وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو اگلی آیت میں نے پڑھی وہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 تھی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. پھر اسے اگلی آیت میں آتا ہے کہ یہ پوچھے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, میں تو دیکھتا تھا دنیا میں, میری تو آنکھیں تھیں, اچھا بھلا دیکھتا تھا. تو جواب دیا جائے گا کہ کذالک, اسی طرح آئیں تھی تیرے پاس میری آیتیں, لیکن تو ان کو بھلا گیا, آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا. تو عزیز ساتھیو, آج ان دو آیتوں کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ قومی سطح پہ یعنی ایک نیشن ہونے کے ناطے, بینگ مسلم امہ ہونے کے ناطے آج ہماری جو حالت ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور دوسری آیت کی روشنی میں انفرادی یعنی ہماری پرسنل لائف کے اندر حالات کب بدلتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک کیا تھا, فورچون ان بوتھ ورڈز, دونوں جہان میں کامیابی. مسلمان ہونا, اللہ کا متی اور فرما بردار ہونا کسی انسان کی دنیا اور آخرت کی خوش بختی کی علامت ہے, کوئی مانے کہ نہ مانے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ دنیا بھی اسلام پہ عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے, اور آخرت میں جنت کے وعدے ہیں وہ بھی ایمان والوں کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ باقی سب صرف وقت گزار رہے ہیں, بیگار کی کاٹ رہے ہیں, اپنے حصے کے जो नेमतें और इनामात थे वो दूसरों को दे रहे हैं और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में सुकून, खुशी और चैन से महरूम है। अगर आज हम मुसलमानों को इनफरादी सतह पे देख लें या एक बिग सिनेरियो में देख लें, तो ऐसा लगता है कि आज मुसलमान की दुनिया को इतनी खूबसूरत नहीं रही। इस वक्त ये बात करते हुए मेरी निगाहों के सामने अखबार की चंद हेडिंग्स हैं और मेरी तो आंखों के सामने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनकी तो हर सुबह ही इन हेडिंग्स के साथ होती है। मुल्कों के नाम लिए बगैर अगर आप देखें, फलां जगह 20 मुसलमान कत्ल कर दिए गए, फलां मुल्क में इतनी मुसलमान औरतों की इज्जत लूट ली गई, फलां जगह इतने लोगों को हैंडीकैप बना दिया गया, टॉर्चर सेल्स में डाल दिया गया। ये खबरें किसी के लिए नई नहीं, और ख़ास तौर पे जब से मुसलमानों ने कुरान की तिलावत की तरह अखबार की तिलावत करना शुरू कर दी। कुरान तो निकल गया सुबह के वक्त में, और दुनिया की खबरें रखने के लिए जब अखबारात पढ़ते हैं तो हर रोज़ ही बदमज़ा होके उठते हैं। अच्छी भली सुबह होती है और सामने कत्ल की बातें सुन के पढ़ के इंसान परेशान होते हैं, तो सवाल पैदा होता है कि आखिर मुसलमानों की ये हालत क्यों? एक मुसलमान का खून बहता है, अल्लाह ताला का अर्श हिल जाता है। एक मुसलमान को नाहक कोई कत्ल कर दे तो अल्लाह ताला उसके कसास में बदला लेने तक को इजाज़त देता है। कत्ल जैसी चीज़ जो बिल्कुल जायज़ नहीं किसी की भी करना, लेकिन जब मर्दे मोमिन को कोई कत्ल करे तो उसके बदले में तीन सूरत हाल इस्लाम ने हमें दिखाई। उसको कत्ल कर दिया जाए जिसने कत्ल किया, उससे दियत ली जाए यानी 100 ऊँटों की कीमत ली जाए, और फिर अगर घर वाले वरसा चाहें कि माफ़ कर दें तो आखरत में उनके लिए अजर है। गौर कीजिएगा कि एक इंसान के कत्ल के ऊपर इतनी बड़ी सज़ा है, तो कहाँ जहाँ इतने लोग कत्ल हों वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से फैसले क्यों नहीं आ रहे? क्या आज ये लगता है कि मुसलमान अल्लाह की मदद में है? इतने लोग मरे, हम तो मजबूर हो सकते हैं, हमारे पास तो असबाब नहीं होंगे, हमारे पास तो वेपन्स की कमी हो सकती है, हमारे पास तो एटॉमिक एनर्जी नहीं होगी, लेकिन क्या अल्लाह की रहमत के खजाने कम हो गए? क्या उसके लश्कर कम हो गए? क्या वो फरिश्ते जो मैदाने बदर में उतरे थे आज नहीं उतर सकते? क्या वो हथियार जो फरिश्तों ने उठा रखे थे आज नहीं उठाए जा सकते? यकीनन उठाए जा सकते हैं। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ए अल्लाह, तू बादशाही का बादशाह है, इज्जत तेरे हाथ में है, जिल्लत तेरे हाथ में है, खैर के सारे खजाने तेरे हाथ में हैं। वो मालिक आज भी मदद कर सकता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि जिसने अल्लाह ताला को चैलेंज किया अल्लाह ताला ने उसको नीस्तो नाबूद कर दिया। सिर्फ याद दहानी के लिए चंद तारीख के वाक़यात अगर आपके सामने हवाले के तौर पे रख दूँ तो बात समझना आसान हो जाएगी। माजी में एक तागूत गुज़रा जिसको लोग नमरूद के नाम से जानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उसने मनाजरा किया, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में शक किया और दावत दे दी कि तुम अपने खुदा को कह दो कि वो अपनी फ़ौजें लेके आ जाए, मैं अपनी फ़ौजों को लेके आ जाता हूँ और मुकाबला कर लेते हैं, जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा, उसको खुदा मान लेंगे। उस दुश्मन खुदा ने चैलेंज दिया, अल्लाह ताला को क्या परवाह थी, ठीक है, वो अपनी फ़ौजें लेके आ गया, जितनी तैयारी कर सकता था कर चुका। और जब उसकी तरफ से पूरी कोशिशें हो गईं तो अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से सिर्फ एक ही फ़ौज आई और वो मच्छरों की फ़ौज थी। अल्लाह ताला ने मच्छरों को हुक्म दिया कि जाओ इसकी फ़ौज के ऊपर टूट पड़ो। इतने मच्छर आ गए कि सूरज की रोशनी उनके अंदर छुप गई और अंधेरे की कैफियत हो गई, और चंद लम्हों में उन्होंने उसकी फ़ौज को चाट के रख दिया, खा गए, उनको हड्डियाँ रह गईं, गोश्त ख़त्म हो गया, और उन्हीं में से एक मच्छर उस नमरूद के नाक में घुसा और कई साल तक अजियत देता रहा कि अपने सर में जूतों से पिटवाता था, और आखिर उसी के साथ उसकी मौत हुई। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि कुल जाल हक व जहक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल चला गया, और बातिल तो है ही जाने वाली चीज़। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। तारीख़ के ऊपर एक और निगाह डाल लीजिए, थोड़ा सा वक्त आगे आता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त आता है। उनके सामने जो सुपर पावर खड़ी थी उसका नाम फिरौन था, फिरौनी निज़ाम, जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता था। और यहाँ याद रखिएगा, हर दौर के तागूतों ने यही नारा लगाया, हम तुम्हारे बड़े हैं, हमें रब समझो, हम तुम्हारे राज़िक हैं, हम तुम्हारे मदद देने वाले, हमारी बातों से डरो। फिरौन ने भी यही किया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो उनका मामला हुआ वो बहुत बात आम है और कुरान पाक में जगह जगह इसकी बात आती है, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जब सदियों की पिसी हुई बनी इसराइल, जो अपने दौर के मुसलमान थे लेकिन अपने दीन पे थे, तौहीद थी, अल्लाह का नाम लेते थे, अल्लाह को पुकारते थे, मूसा अलैहिस्सलाम की माईयत में जब घरों से निकले, दुश्मन को पता चल गया, उसने पीछा किया, सामने समंदर है, पीछे दुश्मन है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के असा को एक ऐसा जरिया बना दिया कि सामने दरिया जो था, समंदर जो था बल्कि, वो दो रास्तों में बट गया। एक असा पड़े मोमिन का तो दरियाओं में रास्ते बन जाएं। आज वो असा नहीं, आज वो ज़र्बे कलीमी नहीं, आज वो ईमान नहीं। एक सच्चे मोमिन का ईमान तो समंदरों में रास्ते बना दे, पहाड़ों में दरारें कर दे। ज़मीन खुश्क थी, एक मर्दे मोमिन की दुआ से हर दौर में अल्लाह ने मदद की, मूसा की भी मदद की, और बनी इसराइल उस समंदर से पार उतरे, जो उस दौर के मुसलमान थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह की जमात थे। और फिरौन डूब गया, एक बड़ी ताकत डूब गई। अगर उस दौर का अखबार कोई होता या उस दौर में मीडिया होता तो शायद बॉम्ब से ज़्यादा बड़ी खबर फैलती है कि आज फिरौन डूब गया, आज की सुपर पावर डूब गई, सारा इक्तदार, सारी अपनी बेमिसाल तरीक़ा ज़िंदगी की के दावे डूब गए। अल्लाह ने मदद की थी, क्योंकि उस वक़्त तक बनी इसराइल के अंदर तौहीद थी, ईमान था। एक बार फिर अल्लाह ताला ने साबित करके दिखा दिया कि देखो, अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वअन्तुमुल आलौन इन कुन्तुम मुमिनीन। ओ मुसलमानों, तुम ही बुलंद हो, तुम ही सर बुलंद हो, शर्त एक है, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम्हारे अंदर सच्चा ईमान है। तुम्हारा ये ईमान दुश्मन के कदम उखेड़ने के लिए काफ़ी है। और आगे जाके देख लीजिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, चारों तरफ जहालत है, कुफर का गलबा है, तागूतियत है, गैर इस्लामी निज़ामे ज़िंदगी है, और सिर्फ 12 लोग जिन्होंने उनको माना, हवारिये रसूल कहलाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की कोशिशें थी, यहूदी बादशाह से मिलके उनको सूली पे चढ़ाने का प्रोग्राम बना। अल्लाह ने अपनी मदद की ना की, कैसे माफोकुल फितरत असबाब बनाए, छत फटी और ईसा अलैहिस्सलाम को हिफाजत के साथ ऊपर उठा लिया, और वो 12 लोग इस ज़मीन पे फैल गए। ये 12 नुक्ते थे कि जो फैलते फैलते आज देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी है। ये सिर्फ 12 लोगों की नस्ल से फूटा, क्यों? तौहीद थी, इखलास था, अल्लाह ने मदद की, बात हो गई। आज उन्हीं की नस्लों के अंदर फिर शिर्क आ गया, अल्लाह ताला ने अपना वादा मुसलमानों से पूरा किया। इस वाक़े के गुज़रने के कुछ सदियों के बाद एक शख्स जिसके दिल में इस चीज़ का ख्याल आया कि मैं एक घर बनाता हूँ, जिस तरह लोग अल्लाह के घर काबा का तवाफ़ करने जाते हैं, हर साल वहाँ लोग जमा होते हैं, नजराने देते हैं, चंदा जमा होता है, तिजारत होती है, क्यों ना मैं भी एक ऐसा घर बना लूँ। हसद आ गया। उसने मुसलमानों के काबा के साथ एक मुकाबलेबाजी की। अबरहा उसका नाम था, रहमानुल यमामा उसको कहते थे। कोशिश की कि अल्लाह के घर को तबाह कर दे। अल्लाह के घर को ख़त्म करना ऐसे ही था जैसे उस दौर से इस्लाम का नाम मिट जाए। मरकज़ जो होते हैं ये तो किसी को भी जोड़ने वाले होते हैं ना, जब मरकज़ टूटता है ना तो बड़े बड़ी कुव्वतें बिखर के रह जाती हैं। और उसने आके अल्लाह के घर को ढाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने मामूली परिंदों को भेजा। अलम तारा कई फ़ाला रब्बुक बि अस्हाबिल फील, तुमने देखा, गौर तो करो, तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया, क्या उनके मकर को तबाह बर्बाद नहीं कर दिया। उन पे छोटे छोटे परिंदे भेजे जिनकी चोंचों के अंदर और पंजों के अंदर छोटे छोटे बुलेट थे। कहते हैं हर परिंदे ने तीन कंकरियां थी, एक चोंच में थी और एक एक पंजे में थी, दूसरी दूसरे में। जिसकी चोंच जितनी थी उतना ही आया। और वो कंकर क्या थे, वो आज के दौर के बुलेट थे। एक छोटी सी गन के अंदर से बुलेट भी निकलता है तो उसकी भी क्या ताकत होती है। अल्लाह ताला ने उन परिंदों से वो काम कराया जो आज की क्लाशन कोव्स नहीं कर सकेंगी। और वो जिसके सर पे पड़ता उसके जिस्म से गुजर जाता और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। एक बार फिर अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि मैं किसी से नहीं डरता। जो अल्लाह के नाम को, अल्लाह के दीन को मिटाने आएगा वो खुद मिट जाएगा। और अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत कर ली। उसके बाद अल्लाह का नबी पैदा हुआ। सीरत तो आप सबने पढ़ रखी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक बाब से आप वाकिफ़ होंगे। अल्लाह के नबी सल्लम के 13 साल जो मक्का में गुजरे उसकी एक एक कहानी आपको असबर हो चुकी होगी, मुझे उम्मीद है। अपने बच्चों को सुना सुना के, खुद अपने लिए उसमें से सबक लेने की नीयत से आपको ज़ुबानी याद होंगी इंशाअल्लाह ताला। खोल के देख लीजिए, मदीना का दौर देख लीजिए, बदर की जंग देख लीजिए। 313 हैं, 2 घोड़े हैं गालिबन और 100 ऊंट हैं। टूटी हुई तलवारें, कोई इरादा नहीं, कोई नीयत नहीं कि आज जंग होगी, लड़ाई होगी। वो तो अपना माल बचाने की नीयत से गए थे और वहाँ जंग हो गई। 1,000 का लश्कर जदीद मिसाइलों से लैस, आज की ज़ुबान में शान व शौकत दिखाता हुआ, घर से तैयारी करके आया हुआ, ऊंट घोड़े और जो कुछ हो सकता था वो उनके पास था। और रौनत का शिकार अबू जहल, कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया हर दौर का एक फ़िरौन होता है, और मेरा फ़िरौन अबू जहल है, और मेरा फ़िरौन मूसा के फ़िरौन से ज़्यादा शदीद है। अल्लाह ने बदर के कुएं में उसको फिकवाया, 2 छोटे बच्चों से उसकी जान निकली। और आज भी लोग हैरान हैं कि वो 313 लोग कैसे कामयाब हो गए। सिर्फ मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम, मुस्तशरिक, हिस्टोरियन हैरान है कि वो क्या स्ट्रेटजी थी कि 313 लोग 1,000 के मुकाबले में बग़ैर हथियारों के जीत गए। अब देखिए हर बंदे के आगे 3 काफिर आते हैं, 1/3 का रेशो था और हथियार इसके अलावा थे। अल्लाह ने फतह दी। जहाँ इंसान नहीं होते अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देता है। फरिश्ते उतरे थे, लोग समझते थे कि हमने मारा, वो फरिश्तों ने मारा होता था। सहाबी कहते हैं कि हम हथियार उठाते अभी कि फलां काफिर को मारें, इससे पहले कि हमारी तलवार उस पर जाती हम उसका सर कटा हुआ ज़मीन पे देखते। बाद में पूछा अल्लाह के नबी सल्लम ये क्या था, तो कहा उनको फरिश्तों की मार ने मार दिया। जब जंग ख़त्म हुई तो देखा कि कुछ ज़ख्मी जो थे या जो मरे हुए लोग थे उनके ऊपर जलने के निशान थे, तो सहाबे कराम बड़े हैरान हुए। अल्लाह के नबी सल्लम आग तो लगी नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, ये जले कैसे? तो आपने फरमाया ये फरिश्तों की मार के निशान है। मैदान बदर में लोगों ने आवाज़ सुनी, कोई ज़ोर से कह रहा है हैजूम आगे बढ़ो। बाद में लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी ये कौन थे? कहा ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और अपने घोड़े को हुक्म दे रहे थे कि आगे बढ़ो, दुश्मनों को ठीक कर दो। कहीं तीसरे आसमान की मदद पहुंची, कहीं चौथे की पहुंची, अल्लाह के हाथ किसी ने बांधे हुए हैं? फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। आज भी अगर बदर वाली फिजा पैदा होगी तो फरिश्ते उतरेंगे। अल्लाह ने साबित करवा दिया। इस्लाम गालिब हुआ, नहत्ते मुसलमान जीत गए और इस्लाम का गलबा हो गया। ठीक एक साल के बाद गज़वे उहद होता है, मुसलमान घर से निकले तो 1,000 थे, जब वहाँ पहुँचे तो 700 रह गए। क्या पता चला कि 1/3 नफ्स के चाहने वाले थे, निफाक दिल में लेके बैठे थे। मुकामे शौत पे पहुँचे, अब्दुल्ला बिन उबई को सा ने कहा, तुम कहाँ चल पड़े, मर जाओगे, तुम्हें पता है काफिर 3,000 हैं, ये जंग थोड़ी है, ये तो खुदकुशी है, चलो घर चलते हैं। जो लोग दूसरों के देखा देखी निकलते हैं, फिर वो आहिस्ते से खिसकने लगते हैं, चले गए और पीछे मुसलमान 700 रह गए और काफिर थे 3,000। क्या रेशियो बना, एक मुसलमान के आगे 3 काफिर। अब देखिए, अगर इसको प्रैक्टिकली भी देखिए, एक बंदा खड़ा हो, उसके सामने एक आएगा तो उसे मुकाबला कर लेगा ना, वो मारेगा वो मारेगा, आपस में मुकाबला हो जाएगा। चले दो हो जाएं, एक के सामने दो खड़े हैं, दोनों एक दाईं तरफ खड़ा हो रहा है, कोई बाईं तरफ, शायद कुछ कर ले बंदा। लेकिन ज़रा सोचे, एक बंदे के एक सामने हो, एक दाएं पे हो, एक बाएं पे हो, और दाएं बाएं क्या पीछे चला जाए, एक बच सकता है इंसान, मुमकिन ही नहीं। लेकिन अल्लाह ने मदद दी, किस तरीके से दुश्मन मुसलमानों के हाथों से पिटे, शुरू में इस तरह पिटे कि थोड़ी देर भी जंग हुई कि भाग गए। उनकी औरतें अपनी पाजेबें दिखाती हुई, कपड़ों टांगों से कपड़े उठाते हुए सरपट भाग रही थी, ऐसे मार के हुए। वो तो उस वक्त मुसलमानों में से किसी एक से एक इज्तिहादी गलती हुई और जगह छोड़ दी। अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ 50 सहाबा का दस्ता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खूबसूरत सेटिंग की थी, कहा देखो हम जिए या मरें, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, फतह हो या शिकस्त हो, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, तुम देखो कि परिंदों ने हमारे सर नोच के खा लिए, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। इतनी सख्त मैनेजमेंट थी। लेकिन जब बज़ाहर दुश्मन भागा, ये समझे जंग ख़त्म हो गई और बाकी लोग माले गनीमत जमा करने लगे, इन्होंने कहा अब हम भी करते हैं, ये हुक्म सिर्फ अब तक था, अब तो जंग ख़त्म हो गई। लेकिन वही हुआ जिसका डर था, जो ही वो जगह छुटी, दुश्मन के लिए वो रास्ता ऐसा था कि वहाँ से हमला करना आसान था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने साथ एक दस्ता तैयार किया, पीछे से आके मुसलमानों पर हमला किया। वो माल जमा कर रहे थे, पीछे से मुसलमानों को पता भी नहीं था दुश्मन आएगा, और फिर ज़बरदस्त नुकसान हुआ, 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लम का दान मुबारक शहीद हो गया, आपके चेहरे पे खौद की कड़ियाँ लगीं, खून निकल आया, आपकी ज़ुबान से बात निकल गई कि वो कौम कैसे फला पा सकती है जो अपने नबी को ज़ख्मी कर दे। क्यों तकलीफ़ हुई, माल की मोहब्बत। लेकिन मुसलमान यानी तकलीफ़ में तो आए, लेकिन काफिर कुछ कर नहीं सका, वापस चला गया। मक्का की बजाय मदीना में भी आ सकता था, लेकिन खौफ ऐसा तारी हुआ कि सरपट भाग गया। बाहर जब गया दूर, तो फिर ख्याल आया अबू सुफियान को कि मैंने क्या किया, मैं तो वो तो टूटे हुए थे, उनके तो ज़ख़म ज़ख़म हो चुके थे, हम ज़रा सारे मिल के जाते मदीना पे हमला करते, हम शहर में फतह याब हो के दाखिल होते। लेकिन अल्लाह ने उनका रुख मक्का से मदीना की तरफ मोड़ दिया, पलट गए। उन्होंने माल को देख के पहाड़ी दर्रा छोड़ा, शिकस्त हुई, नुकसान के असरात बने। आज क्या मुसलमान अपनी जगह नहीं छोड़ रहा? जब मुसलमान माल की तरफ गया, जब मुसलमान हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत की तरफ गया, तब दुश्मन की नज़रों में छोटा हो गया। बहरहाल आगे चलते हैं, गज़वे उहद भी ड्रॉ हो गई, नुकसान दोनों का बराबर का हुआ, लेकिन फतह किसी को नहीं मिली। लेकिन अल्लाह ने सकीनत दी, फिर दोबारा मुसलमानों के दिल बंध गए, बारिश हुई, सुकून हुआ, इत्मीनान हुआ, मामला चल पड़ा। आगे चल के देखिए, अबू सुफियान जाते जाते एक धमकी दे गया कि देखो आज इस दफ़ा तो कुछ नहीं कर सके, अगले साल फिर आऊँगा। कई वाक़यात, मुझे यकीन है आपको सारे आते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ अपने ईमान को बढ़ाने के लिए दोबारा आपके सामने करती हूँ। हमरुल असद पे जाने का चैलेंज कर गया, आऊँगा अगले साल, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। कहा अच्छा तुम आते हो, आज का मुसलमान हो तो कहता माफ़ कर दो, शर्तें कर लो, कर लो जो करना है, बताओ क्या करें, तुम बताओ कौन सी जूतियाँ तुम्हारी ठीक करें, कहाँ वह करें। कहा नहीं तुम आओगे, हम पहले चाहेंगे। उसको तो तारीख याद थी, नहीं याद थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेके वहाँ पहुँच गए। आओ फिर देखते हैं क्या होता है। जब सुना कि मुसलमान वहां जमा हो गए, आने की जरूरत ही ना आई, पलट गया। एक शख्स को खरीदा, अबू नाइम, एक शख्स मदीना की तरफ जा रहा था, उसको कुछ रिश्वत दी, कहने लगा देखो ये पैसे ले लो, सिर्फ जाके मुसलमान फौजियों के बीच में एक खबर अफवाह फैला दो। और वो क्या कि अबू सुफियान बहुत बड़ा लश्कर लेके आया है, ताकि ये सुन के मुसलमानों के हौसले टूटे, छक्के छूटे, बस हम यही चाहते हैं। उसने कहा लो क्या बड़ी बात है, लाओ पैसा दो। वो गया, उसने जाके सहाबे कराम के बीच में ये अफवाह छोड़ दी कि अबू सुफियान बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, खड़े ना होना, वो तो तुम्हें मार देगा। उसने तो कहा कि इनका ईमान कमज़ोर हो जाए, अल्लाह ताला कहते हैं फज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान इतना बड़ा, कहने लगे हसबुनल्लाहु व नेमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है, अबू सुफियान आता है तो आए। अब इस जुमले का काफिरों पे क्या असर हुआ, कदम ही ना आगे बढ़े, वहीं से पलट गए। मुसलमानों को वहाँ इतना फ़ायदा हुआ, तिजारत का सामान खरीदा, दुश्मनों पे रोबतारी हुआ और खैर मिली।